तारापरी और अमन ने अपनी तिलस्मी कुल्हाड़ी से उस शैतान छिपकली से प्रेमा को बचा लिया। प्रेमा वही लड़की थी जिसके साथ काली शक्तियों के मालिक अमित ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए उसका बलात्कार किया था। अमन अपनी जान बचाने के बदले में प्रेमा से कहता है कि वो जो चाहे उससे मांग सकती है। तब प्रेमा गुस्से से अमन से कहती है, क्या तुम लौटा सकती हो मेरी लूटी हुई इज्जत? ये सुनकर अमन शॉक हो जाता है। वेल, अमन ने प्रेमा की बात सुनी और बोला, मैं नहीं जानता किसने तुम्हारे साथ ये सब किया है, लेकिन बहन, मैं इतना वादा जरूर करता हूँ कि जिस दिन मुझे तुम्हारा दोषी मिलेगा उसे मैं ऐसी भयानक मौत दूंगा कि ये पूरी दुनिया कांप जाएगी। अमन की बात सुनकर प्रेमा में भी एक हिम्मत ने जन्म ले लिया था और वो इस बात को लेकर खुश थी कि जो इंसान उसके दोषी को जानता तक नहीं था वो उसकी मदद करने की बात कितनी हिम्मत के साथ कर रहा था, जबकि वो प्रेमा के लिए बिल्कुल अनजान था। और उसके साथ हुए हादसे के बाद तो उसके अपने घर वालों ने उसका साथ छोड़ दिया था और ये अनजान होकर उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। और ये सब सोचकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले थे। नहीं जानती क्यों अमन की बातों ने उसके अंदर एक हिम्मत सी भर दी थी। अमन ने प्रेमा से कहा, मैं नहीं जानता ऐसा क्या प्रण आपने ले रखा है जो आप इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है बहन, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे भाई की जान खतरे में है। ऐसा कहकर अमन ने तारा से कहा, आप जब तक प्रेमा बहन से बात कीजिए तब तक मैं उस पेड़ से वो जादुई छाता उतार कर ले आता हूँ। तारापरी ने सिर हिला दिया था और वो मन ही मन खुश हो रही थी कि अमन ने उसे प्रेमा के साथ अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि वो खुद प्रेमा से कुछ बात करना चाहती थी। प्रेमा वही लकड़हारी की बेटी थी जिसकी परिवार पर अमित ने जंगलों में लकड़ी काटते समय हमला कर दिया था, केवल ये चेक करने के लिए कि उसके पास कितनी शक्तियाँ हैं और कितनी नहीं। और उसने उन लकड़हारों में मौजूद प्रेमा को अपना निशाना बनाया था। उसी के परिवार के सामने अमित ने उसे नग्न कर दिया था और आज जिस पेड़ के नीचे प्रेमा बैठी हुई थी उसी पेड़ के नीचे उस दुष्ट ने उसके साथ खिलवाड़ किया था। प्रेमा की इज्जत लूट जाने के बाद उसके कबीले वालों ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके बस्ती वालों का नियम था कि इज्जत गवाई हुई लड़की उनके साथ उस बस्ती में नहीं रह सकती थी। इसलिए उन्होंने प्रेमा को उसी जंगल में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। इस जंगल में आने के बाद पहले 3 दिन तो प्रेमा ने फल वगैरह खाकर अपना पेट भर लिया था, लेकिन अब पिछले 4 दिनों से एक अन्न का दाना भी उसके पेट में नहीं गया था। और जब अपना पेट पकड़कर वो उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी तब उसे तारा की आवाज़ सुनाई दी थी जो अमन से कह रही थी कि इस राक्षसी छिपकली की एक भी बात ना माने, और वो छिपकली अमन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर प्रेमा को अपने साथ हुआ खिलवाड़ याद आ गया था और नहीं जानती उस कमज़ोर सी प्रेमा में कहाँ से जान आ गई थी कि उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस छिपकली की पूंछ काट डाली थी, जिससे अमन और तारापरी दोनों की ही जान बच गई थी। अमन जादुई छाता लेने चला जाता है और तारापरी प्रेमा के पास रह जाती है, क्योंकि तारापरी उसके बारे में सब कुछ जान चुकी थी। सो अमन के जाने के बाद तारापरी प्रेमा के पास बैठ गई और बोली, प्रेमा, तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम जो कुछ भी कहोगी वो मैं तुम्हें दूंगी, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, तुम जो चाहो मुझे बता सकती हो। तब प्रेमा ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्यों आप लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं? इस बार प्रेमा ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा था। तब तारापरी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, और सच बोलूं तुमसे तुम्हारा दुख इतना बड़ा है कि मैं चाहकर भी उसे कम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह से अपनी हट पर रहीं तो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाओगी और इस तरह से तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा और कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, और तुम्हारा वो गुनाहगार नहीं जानता तब तक कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह और बर्बाद करेगा। क्या तुम्हारा मन नहीं करता जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की तुम भी उसकी जिंदगी बर्बाद करो? अपने आप को इस काबिल बनाओ कि उस दुष्ट के अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर सको। तारापरी की बात सुनकर प्रेमा के अंदर एक हिम्मत ने जन्म ले लिया था और वो कहने लगी, मैं अकेली लड़की भला उस शक्तिशाली दानव का क्या बिगाड़ सकती हूँ? उस दुष्ट के पास असीमित शक्तियाँ हैं और मैं एक मामूली इंसान, भला मेरा उससे कैसा मुकाबला? तब तारापरी बोली, तुम जानती हो तुमने हम लोगों की जान उस दुष्ट से भी बड़ी काली शक्ति से बचाई है, तो भला उस दुष्ट की क्या औकात तुम्हारे सामने? प्रेमा इस बार सोच में पड़ गई थी, क्योंकि तारापरी जो कह रही थी वो वाकई सच था। तब तारापरी ने उसे कहा, मैं तुम्हें एक घर देना चाहती हूँ जहाँ तुम रह सको, और प्लीज मना मत करो, ये मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ और ना ही तुमने जो हमारी जान बचाई है उसके बदले में तुम्हें ये घर दे रही हूँ। तब प्रेमा ने कहा, मैं समझ चुकी हूँ आप लोग काफी पैसे वाले लोग हैं और आप पैसों से मेरे लिए घर, खाना सब खरीद सकते हो, लेकिन मैं तो अकेली हूँ। घर ईंट पत्थर से नहीं बल्कि लोगों से बनता है और मेरे पास तो कोई भी नहीं है। और हाँ, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मैंने कसम खाई है, मैं जब तक अपनी ये आंखों से उस दुष्ट का सर्वनाश नहीं देख लेती तब तक मैं इसी पेड़ के नीचे रहूंगी। उसकी बात सुनकर तारापरी मुस्कुराने लगी थी और वो बोली थी, मैं तुम्हें कहीं शहर में घर देने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि यहीं इसी जंगल में घर देने की बात कर रही हूँ। तारापरी की बात सुनकर प्रेमा उसे सवालिया नजरों से देखने लगी थी। तब तारापरी बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ। तभी तारापरी ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगी, और देखते ही देखते एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा घर तारापरी के हाथ में था, और तारापरी ने वो घर वहीं पेड़ के नीचे रख दिया और फिर से एक मंत्र पढ़ने लगी थी, और देखते ही एक छोटा सा चूल्हा उसके हाथों में आ गया था। प्रेमा ये सब कुछ बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। उसके बाद प्रेमा ने तारापरी से कहा था, क्या आप कोई जादूगर हैं और मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं? भला इतने से घर में मैं कैसे रह सकती हूँ और इस चूल्हे का मैं क्या करूँगी, जबकि मेरे पास खाना बनाने के लिए राशन का सामान तक नहीं है। तारापरी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी थी और बोली, प्रेमा तुम्हें मेरे पति ने अपनी बहन माना है और मैं तुम्हारी इस हालत में तुम्हारे साथ मजाक के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, इस छोटे से घर को अपने आंचल से छुपा लो और साथ ही साथ इस चूल्हे को भी।
प्रेमा ने न चाहते हुए भी तारापरी की बात मान ली थी, और जब प्रेमा ने दोनों चीजें अपने आंचल से छुपा ली तब तारापरी ने उसे कहा, प्रेमा ये जो छोटा सा घर जो मैंने तुझे दिया है ये एक तिलिस्मी घर है। जैसे ही मैं अपने पति के साथ यहाँ से चली जाऊंगी ये घर इस पेड़ की शाखा जितना ऊंचा हो जाएगा, जो तुम्हें धूप वर्षा आंधी तूफान अंधेरा हर चीज से बचाएगा। और इतना ही नहीं, कोई भी काली शक्ति की नज़र तुम पर नहीं पड़ेगी और कोई जंगली जानवर भी तुम्हें नहीं देख पाएगा। और ये चूल्हा भी कोई आम चूल्हा नहीं है, ये भी एक तिलिस्मी चूल्हा है। इसको अपने सामने रखकर तुम जो भी कुछ खाने के लिए मांगोगी ये तुम्हें उसी पल वो चीज़ लाकर देगा, चाहे वो चीज़ इस दुनिया की हो या दूसरी दुनिया की। और हाँ प्रेमा, याद रहे ये सब चीज़ें जब तक तुम्हारे पास होंगी जब तक तुम्हें कोई मुहाफिज़ नहीं मिल जाता। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा मुहाफिज़ मिल जाएगा ये दोनों तिलिस्मी चीज़ें गायब हो जाएंगी। और हाँ, एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जिस दुष्ट ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया था उस दुष्ट की निशानी तुम्हारे पेट में पल रही है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बच्चा ही उस दुष्ट की मौत का कारण बनेगा। क्योंकि ये एक काली शक्ति का बच्चा है तो इसके अंदर भी कुछ असीमित शक्तियाँ होंगी, जिन्हें तुम्हें काली शक्तियों से अच्छी शक्तियों में बदलना होगा। फिर आगे चलकर तुम्हारा ये बेटा बहुत बड़ा योद्धा बनेगा और सब गरीबों का रखवाला बनेगा, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब तुम अपने स्नेह से इसकी सभी काली शक्तियों को अच्छी और पाक शक्तियों में बदल दोगी। प्रेमा कितनी देर से सांसें थामकर तारापरी की बातें सुन रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तारापरी की बातों का क्या जवाब दे, और इससे पहले कि प्रेमा कुछ बोलती अमन वहां आ गया था और तारा से बोला, हमें चलना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तारापरी ने हाँ में सिर हिलाया और प्रेमा से विदा लेकर वो दोनों जादुई छाते के नीचे खड़े हो गए, और एक बार फिर से वो दोनों उस जादुई छाते के बंधन में बंध चुके थे और अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। तारापरी के वहां से जाने के बाद प्रेमा ने तारापरी की दी हुई दोनों तिलिस्मी चीजों को अपने आंचल से बाहर निकाला, लेकिन वो ऐसी की ऐसी ही छोटी रहीं। प्रेमा मन ही मन सोचने लगी, लगता है ये कोई ढोंगी जादूगरनी थी। ऐसा सोचकर उसने वो घर वहीं पेड़ की शाखा के बिल्कुल नीचे रख दिया और उस चूल्हे को देखकर सोचने लगी कि ये चूल्हा मुझे खाना देगा। चल जादुई चूल्हे, मुझे खाने के लिए सेब दे, प्रेमा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और उसे भी नीचे रख दिया। तारापरी जैसे ही उस इलाके को पार करके थोड़ी दूरी पर गई वो तिलिस्मी घर बड़ा होता चला गया। ये देखकर प्रेमा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, और घर के बड़े होते ही जादुई चूल्हे में से ढेर सारे सेब निकलने लगे थे। प्रेमा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई थी और वो मन ही मन तारापरी पर यकीन न करने के लिए उससे माफी मांगने लगी थी।